आइए आप हमारे साथ में निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। हम उसमें से कुछ आयतों को हम देखेंगे, एक खंड को हम देखना चाहते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 8 तक, आइए हम उस वचन को पढ़ लें। इसमें लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुंचे जो तितर बितर होकर रहते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचिता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। आज का विषय इस खंड के मुताबिक जो है उससे हम देखना चाहते हैं कि जीवन के संघर्षों के मध्य में प्रभु जी को जानना, उसके नजदीक आना, उसको पहचानना। The topic for us this morning from James chapter 1 verses 1 to 8 is knowing God in the midst of trials. और उस विषय को हम देखना चाहेंगे, उसे हम 3 हिस्सों में बांटना चाहेंगे इस टॉपिक को, इस बड़े मुद्दे को। और पहला है जो कि दूसरी आयत में दिया गया है और जिसे हम देखना चाहेंगे, और उसको हमने लिखा है कि जीवन के संघर्षों में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, मुसीबतों में, कठिनाइयों में, संघर्षों में हमारा अपना रवैया वचन के अनुसार में कैसा होना चाहिए, उसको हम देखेंगे। और फिर वचन 3 और 4 के अनुसार में हम देखेंगे कि संघर्षों में, जीवन की कठिनाइयों में, संघर्षों में विश्वास का परखा जाना और धीरज का उत्पन्न होना, इस बात को हम 3 और 4 आयत से हम देखना चाहेंगे। और तीसरी बात हम जो देखना चाहेंगे वो है 5, 6, 7 और 8 के अंदर में लिखा है, जीवन के संघर्षों में बुद्धि की आवश्यकता और प्रार्थना का महत्व। ये 3 बातें इसमें हम देखना चाहेंगे। याकूब की पत्री आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी और इसीलिए हमने सोचा कि याकूब का जो पत्र है, जो बहुत ही मेरे हृदय के नजदीक में है, उसके अंदर से कुछ देखना चाहेंगे। तो इसीलिए आज सुबह में हम याकूब का पत्र उसका 1 अध्याय 1 से 8 देख रहे हैं। याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई, प्रभु यीशु मसीह का भाई था। जैसे पिछली बार हमने देखा कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, यहूदा के भाई याकूब उसके बारे में लिखा हुआ है जो हम देखना चाहेंगे। यहूदा के भाई याकूब पहले आयत के अंदर में वो अपने आप को ये कहता है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुंचे जो तितर बितर होकर रहते हैं। अपने आप को वो ये कहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह का भाई हूं, लेकिन मसीह का दास हूं। वो अपने आप को नम्र करता है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात कहता है। प्रभु यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया है, जिसको प्रभु करके उसने माना है, और अपने आप को दास की पदवी देते हुए वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का दास मैं तुम्हें लिखता हूँ। याकूब का पत्र, मैं जब सेमिनारी में था उस वक्त में मेरे एक प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर ने याकूब के पत्र से प्रचार किया था और उनका प्रचार ऐसा था कि याकूब का पत्र पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 5वां अध्याय आखिरी आयत तक केवल इतवार को उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लिया। वो इसीलिए कि याकूब का जो पत्र ऐसा है कि जब हम पढ़ते जाते हैं तो बहुत समझाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ही व्यवहारू तरीके से याकूब हर बातों को लिखता है। मसीही जीवन के अंदर में जो व्यवहार में आने वाली बातें हैं उसके बारे में याकूब ने उसके अंदर में वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करीबन 12 अलग अलग व्यवहारू बातें याकूब पूरे पत्र के अंदर में हमें लिखता है और बताता है। जैसे पौलुस अपने पत्र को जब लिखता है तो उस समय में वो कोई एक विशेष बात को या दो विशेष बात को या कोई प्रश्न को रखते हुए अपने पत्र को लिखता है, ध्यान में रख। लेकिन याकूब के अंदर में वो बात नहीं है, उसने कई चीजों का वर्णन किया और उसको लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो 12 गोत्र है उन गोत्र को ये लिखता है। जो यहूदी लोग थे यरूशलेम में रहते थे, इज़राइल के यहूदी थे और वो अलग अलग जगह पर तितर भीतर होकर चले गए थे, उनको एड्रेस करके ये पत्र को याकूब ने लिखा है। जो बातें याकूब ने उनको लिखी थी वो बातें आज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हम जानने की आज कोशिश करेंगे प्रार्थना के साथ में। और हम देखना चाहेंगे याकूब के बारे में और भी कहा है कि वो बहुत प्रार्थनावादी व्यक्ति थे। जो हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र के अंदर में तो बार बार प्रार्थना के विषय में वो अंकित करता है, लिखता है। प्रार्थनावादी व्यक्ति याकूब था। यरूशलेम की जो मंडली थी, यरूशलेम का जो चर्च था, उस चर्च के अंदर में वो एक बहुत बड़ा अगुवा था। यरूशलेम के अंदर में जब सभा हुई थी पौलुस के दौरान, एक बड़े प्रश्न के ऊपर में विचार किया जा रहा था, तो उस सभा में याकूब की मौजूदगी थी। प्रेरितों के कार्य 15 अध्याय 13 आयत से अगर आप पढ़ते हैं तो याकूब कुछ कहता है वहां पर उस सभा के अंदर में, तो उसका जिक्र वहां पर किया है। तो यरूशलेम में मंडली का एक अगुवा, प्रभु यीशु मसीह का भाई, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब इस बात को लिखता है। और पहली बात जो यहाँ पर लिखता है आज उसके ऊपर में हम ध्यान करेंगे। तो आइए हम फिर से हमारे विषय के ऊपर में आएंगे कि जीवन के संघर्षों के मध्य में प्रभु जी को जानना, नोइंग गॉड इन द मिड्स ऑफ लाइफ्स ट्रायल, इस बात को हम देखना चाहेंगे। और पहली बात उसके अंदर में जो हम देखना चाहेंगे, जो तीन मुख्य बातें हैं उसके अंदर में, पहली बात हम देखना चाहेंगे कि जीवन के संघर्षों में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि दूसरी आयत में हम देखते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, इसे बड़े आनंद की बात समझो। आइए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे परीक्षा के ऊपर में जो हमें यहाँ पर बताया है। परीक्षाएं, विभिन्न किस्म की परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आती है और आसानी से, सरलता से अगर परीक्षा के बारे में हमको समझना है तो हमें देखना होगा कि दिन प्रतिदिन या इस जीवन के अंदर में हम कई सारी परीक्षाएं देते हैं। स्कूल में आप बहुत अध्ययन करते हैं और एक साल के बाद या 6 महीने के बाद में प्रश्न पत्र आता है और आप परीक्षा देते हैं। कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप पढ़ते हैं और उसके बाद में जो विषय आपने पढ़ा है उस विषय का आप इम्तिहान देते हैं, आप परीक्षा देते हैं कि आप कितने खरे हैं उसमें, कितना जानते हैं, और उसका आप अवलोकन करते हैं, आप लिखते हैं और आप परीक्षा देते हैं और तय किया जाता है कि आप पास हुए या फेल हुए। कई किस्म की परीक्षाएं हम देते हैं जीवन के अंदर में। ड्राइवरी सीखने के लिए भी जब हम जाते हैं तो पहले 6 महीने के लिए या कुछ समय के लिए हमको सीखने के लिए मौका दिया जाता है, उसका लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद में हमारी परीक्षा होती है। आरटीओ के पास में जाते हैं, खड़े होते हैं, वो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं और फिर हमें लाइसेंस देना या नहीं देना, हम पास या फेल वो तय करते हैं। परीक्षा हमें देनी पड़ती है। और यहाँ पर लिखा है कि जो मसीही भाई बहन की परीक्षा क्या है, मसीही जीवन की परीक्षा क्या है, वो हम देखना चाहेंगे कि मसीही जीवन में अनेकों परीक्षाएं आती है जिसको कई बार हम नजरअंदाज करते हैं या समझते नहीं है, तो इसीलिए परीक्षा को समझना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन के अंदर में संघर्षों के साथ में परीक्षाएं आती है। जो विश्वास आपने हमने किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, जो विश्वास हमने किया है प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन हमने दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसका बना लिया है, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमारा है उसके वचन के जरिए जो हमने उस पर विश्वास किया है, उस की परीक्षा हमें देनी पड़ती है मसीह जीवन के अंदर में। विश्वास की परीक्षा संघर्षों के जरिए, जब हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, संघर्ष कई किस्म के होते हैं, संघर्ष कई किस्म के होते हैं। कुछ संघर्ष हम मनुष्य हैं और उसके कारण हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं। ये बिल्कुल आसान बात कहते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते कई संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं, जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं। कई बार एक दिन की बीमारी होती है, कई बार 5 दिन की बीमारी होती है, कई बार 6 महीने 7 महीने सालों तक हम बीमार रहते हैं और उस बीमारी की अवस्था से हम गुजरते हैं और वो एक संघर्ष है हमारे शरीर के साथ में, हमारे जीवन के अंदर में बीमारी एक संघर्ष शायद हमारे जीवन के अंदर में ले आती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। कई बार अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और कई दिनों तक हमें बैठना पड़ता है घर में, कई समस्याएं उसके कारण आती है हमारे जीवन के अंदर में। और मनुष्य होने के नाते शायद ये बात भी आती है, रिश्ते, हम सामाजिक प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर में हैं और हम एक दूसरों के साथ में रिश्ते रखते हैं, हमारे कई रिश्ते हैं घर के अंदर में, एक परिवार के अंदर में एक रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, मित्रों का रिश्ता, कलीसिया में हम अलग अलग संबंध या रिश्तों में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार उस रिश्तों में खटास आती है, तकलीफ होती है, कुछ हो जाता है और हम संघर्ष से गुजरते हैं, कैसे उस रिश्तों को हम सुलझा दें, कैसे फिर से ठीक करें। और उस रिश्तों के कारण कई बार हमारे जीवन के अंदर में कठिनाइयां आती है, संघर्ष आता है। वित्तीय संघर्ष, कई बार पैसा की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, जीवन जीने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता है, वित्तीय आवश्यकता है, लेकिन कई बार जो हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे पास में वो नहीं है और उसके कारण कई और संघर्ष परिवार में आते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। हम उन संघर्षों से हमारे जीवन के अंदर में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के कारण भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, संघर्ष आते हैं, दुख आता है, कठिनाइयां आती है। प्रभु यीशु मसीह खुद उस रास्ते से गए जो हमने बार बार इस कलीसिया के अंदर में पढ़ा अलग अलग वचनों के जरिए, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते भी उनको इस पृथ्वी के ऊपर में जब वो थे तो उनको उन सारी कठिनाइयों से जाना पड़ा। प्रेरित, जितने भी प्रेरित थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, उनको भी कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। और वही चीज हम सबको दी गई है कि हमको भी इन कठिनाइयों से, इस परिस्थिति से जाना है। कई बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के खातिर जो जीवन हमको जीवन जीने के लिए बुलाया गया है उसके कारण हमको दुख सहना पड़ता है, कठिनाइयों से जाना पड़ता है, हमें उसमें से खरा उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो विभिन्न किस्म की जो परीक्षाएं हैं, यहाँ पर लिखा है, याकूब कहता है कि तुम विभिन्न परीक्षाओं से जाओगे, केवल एक ही किस्म की नहीं, नाना प्रकार की परीक्षा है, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायल, विभिन्न परीक्षाओं से। तो मसीह होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हम कई कठिनाइयों से, परीक्षाओं से हम गुजरते हैं और उसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो याकूब यहां कहता है कि इन बातों में जब आप परीक्षाओं से जाते हैं, जब आप संघर्ष में होकर जाते हैं तो आपका रवैया, आपका मनोभाव, आपका रुख कैसा होना चाहिए। और वही इसमें बताता है कि हे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर बिल्कुल विरोध, विरोधाभास बताया है कि जब दुख से जाते हो, जब संघर्ष में से जाते हो, समस्याओं में से आप गुजरते हो, तो उसमें आपको आनंद करना है, बड़े आनंद की बात समझना है। कई बार संसार, दुनिया ऐसे नहीं सोचती, जब हम दुख से गुजरते हैं या कठिनाइयों से या संघर्षों में हम रहते हैं, अगर हम बीमार हैं या वित्तीय समस्या से जा रहे हैं, रिश्तों में कुछ खटास आई है, या अलग अलग किस्म के जो संघर्ष से अगर हम जाते हैं, और उसके अंदर में याकूब हमें कहता है कि आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आनंद की बात समझो। अक्सर हम लोग आनंद की बात नहीं समझते हैं, हम लोग उसमें निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं ना। जब परीक्षाएं आती हैं तो हमारा जो रवैया होता है वो अलग रवैया होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन याकूब के जरिए हमें कहता है कि आपको उसको आनंद की बात समझना है। और उस बात को समझने के लिए जो दूसरी बात यहाँ पर याकूब हमें लिखता है, उस बात को हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि क्यों उसको हमें आनंद की बात समझना है। क्योंकि तीसरी आयत के अंदर में लिखा है कि यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास को परखा जाता है। आनंद की बात इसीलिए समझना है क्योंकि जो विश्वास तुमने किया है, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में तुम्हारा है, उसको परखा जा रहा है। और इसीलिए आनंद की बात समझना बहुत आवश्यक है। विश्वास अलग अलग हम देखते हैं। यहां पर जो लोग आज पहली बार इस कलीसिया में आए हैं शायद, या आप यहाँ पर कलीसिया में आते हैं लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक उद्धारकर्ता और एक प्रभु के रूप में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो शायद ये बात आपके समझ में नहीं आए। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया है, प्रभु माना है, उनके लिए ये बात यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है तो कुछ ही समय में हम आपको फिर से उस उपसंदेश को बताएंगे, और ये मौका रहेगा कि आज प्रभु यीशु मसीह को आप जाने, ताकि संघर्ष जब आपके जीवन में आते हैं तो आपका जो रवैया, आनंद का रवैया कैसे होना चाहिए, उसको आप भी जानें। लेकिन साथ में हम देखेंगे कि आनंद की बात समझने के लिए याकूब हमें यहाँ पर जब कह रहा है, तो उसके विरोध में हम अगर देखते हैं, जब हम आनंदित नहीं होते हैं तो हम या तो दुखित होते हैं, या तो निराश हो जाते हैं, या तो हताश हो जाते हैं हमारे जीवन के अंदर। और जब विभिन्न किस्म की परीक्षाएं हमारे ऊपर में आती है, संघर्ष हमारे ऊपर में आते हैं, और उस समय में हम एकदम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, आशा को छोड़ देते हैं, उसका मतलब यह हो जाता है कि हमारा जो विश्वास, जिस प्रभु के ऊपर में हमारा विश्वास है, वो विश्वास नहीं रहता है और हम कहीं और निकल के जा रहे हैं। तो ये जो संघर्ष और निराशा के अंदर में अगर हमारा रवैया आनंदित नहीं है तो हम विपरीत बाजू की तरफ में चले जाएंगे, हम विश्वास की जो परीक्षा हो रही है उसमें पास नहीं होंगे, या विश्वासी परीक्षा नहीं देने पाएंगे, और हम धीरे धीरे निराश होकर निराशा में गिरते जाएंगे। जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास में कोई चीज नहीं रहती है, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर में नहीं है, और इसीलिए हम वो बातें करेंगे जो बातें प्रभु हमें करने के लिए मना करते हैं, और ऐसी बातों का सहारा हम लेने लगे, हम वस्तुओं का सहारा लेने लगेंगे, हम पैसों का सहारा लेने लगेंगे, हम दूसरों का सहारा लेने लगेंगे, और हम ऐसी बातों का सहारा लेने लगेंगे जो बात प्रभु ने उसके वचनों में मना किए, हम पाप में गिरते जाएंगे। लेकिन याकूब कहता है कि ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास को परखा जाता है, इसलिए आनंद की बात समझो। आइए हम दूसरी बात जो देखना चाहते हैं, हमारा जो रवैया है उसके बाद में दूसरी बात जो हम देखना चाहते हैं वो ये हमें कहती है कि संघर्षों में विश्वास का परखा जाना और धीरज का उत्पन्न होना। जब संघर्ष से हम जाते हैं तो विश्वास को परखा जा रहा है, विश्वास को परखा जा रहा है। विश्वास क्या है जिसको परखा जाता है? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो जीवन दिया और उसके ऊपर में हमने विश्वास किया, हमने अपने पापों को मान लिया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास दिया और विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके और प्रभु ने हमें बचाया, हमारे पापों की क्षमा दी और हमें माफ किया और हमें स्वर्ग की ओर का रास्ता प्रभु ने दिखाया, उसके परिवार का हमें बना लिया। जब हमको उसके परिवार का बना लिया, उस वो विश्वास हमारे अंदर में दिया, अब जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम मसीह यीशु को दिन प्रतिदिन जानते हैं, हमारे परमेश्वर को हम जानते जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ते हैं उसको जानते हुए कि ये विश्वास मेरा है, मेरे प्रभु के ऊपर में मैंने विश्वास किया है और हम बढ़ते हैं प्रभु में, हम बढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास सुनने के जरिए हमें मिलता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देता है, जो विश्वास हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा रखने के लिए वो विश्वास हमें मिलता है। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिसने इस सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके पीछे चल रहा है, उनको ये पत्र जब वो लिखता है तो वो ये कहता है कि विश्वास से चलना, बिना विश्वास से परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। वचन हमें विश्वास देता है, बिना विश्वास से जो प्रभु पर हम करते हैं परमेश्वर को खुश नहीं करते, परमेश्वर हमें विश्वास देता है। लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि जब वो विश्वास हम करते हैं तो वो प्रभु के वचन के ऊपर में है और प्रभु के वचन के ऊपर में विश्वास होने का मतलब ये हम ये कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। प्रभु को जानना कि वो कौन है जिसके ऊपर में मेरा विश्वास है। हम कल बाइबल अध्ययन कर रहे थे गाँव के अंदर में और कुछ 15 भाई बहन लोग थे हमारे साथ में, जवान लड़के और लड़कियां थी और हम प्रभु के बारे में हम सीख रहे थे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। और जब हम उस बात को देख रहे थे तो हम भजन संहिता 145 और उसकी तीसरी आयत को देखते थे कि परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा है क्योंकि वो महान है और अगम्य है। परमेश्वर महान है वो अगम्य है, यानी कि जब हम परमेश्वर की महानता को देख रहे थे, परमेश्वर के बारे में जब हम सुन रहे थे तो इसके अंदर में लिखा है कि ग्रेट इज द लॉर्ड एंड मोस्ट वर्दी ऑफ प्रेज, हिज ग्रेटनेस नो वन कैन फैदम। यानी कि परमेश्वर महान है। महानता का मतलब क्या है कि वो कितना महान है? कई बार हम कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, हमारा परमेश्वर महान है। लोग ये भी कहते हैं कि हाँ परमेश्वर तो महान ही होता है, हमारा परमेश्वर भी महान है। कई महान लोग रहते हैं तो बोले कि अरे वो संत भी महान है, ये भी महान है। और महानता के बारे में हम बहुत कुछ कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक है और एक महान शिक्षक है। प्रभु यीशु मसीह हाँ महान शिक्षक है, लेकिन इसके ऊपर में हम प्रभु को कैसे देखते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि उसकी महानता अगम्य है। अगम्य है का मतलब हम ये कहते हैं कि कोई समझ नहीं सकता, अगम्य है। और ऐसा महान हमारा प्रभु कैसे होता है? जब हम उसी बात को एफिसियों के पत्र से देख रहे थे दूसरे अध्याय के अंदर में, आइए हम एफिसी के पत्र उसका दूसरा अध्याय खोलते हैं। विश्वास को हम जब जान रहे हैं, एफिसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत के अंदर में परमेश्वर का ये एक चरित्र, परमेश्वर का ये एक गुण यहाँ पर लिखा है। लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ लिखा है पांचवी आयत में, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। चौथी आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, वो महान कैसे है, वो दया का धनी है। और फिर इसके ऊपर में हम देखते हैं पहली आयत से तीन आयत तक हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चौथी आयत और पांचवी आयत हमने पढ़ी, लेकिन दया का धनी है उसको अगर समझना है तो हमें एक से तीन आयत को भी पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा है एफेसी 2:1-3, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्रोध की संतान थे, हमारे पापों में मरे हुए थे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है उनके लिए भी ये सुसमाचार यहाँ पर है। और हम ये इसमें लिखा है कि हमारा जो जीवन प्रभु से जब हम दूर हैं, प्रभु को जब हम नहीं जानते हैं, तो उस समय में हम अपने अपराधों में अपने पापों के कारण हम मरे हुए हैं, प्रभु का वचन यहाँ पर ये बताता है। और हम उन अधिकारी और उसकी पूजा करते थे, उसके पीछे चलते थे जो संसार के अंदर में है, जो शरीर की लालसा हमारे अंदर में है, उसके साथ में हम दिन बिताते थे। यानी कि हम परमेश्वर से दूर थे, मरे हुए थे और हमारे शरीर की लालसाओं के कारण और उस अधिकारी जो इस संसार को आगे ले चलता है उसके पीछे हम चलते थे। स्वभाव ही से हम एक क्रोध की संतान थे, यानी कि हमारे ऊपर में परमेश्वर का दंड योग्य था, परमेश्वर का दंड वहां पर आना था। जब हमारा न्याय होगा उस समय में, न्याय के समय में परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर में आए, ये जीवन के अंदर में हम जी रहे थे। लेकिन जब हम चौथी आयत के अंदर में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर जो दया का धनी उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो न्याय के अंदर में उनके पास में एक न्याय है और दूसरी बात परमेश्वर के पास में दया है। परमेश्वर के पास में अन्याय नहीं है, वो अन्याय नहीं करता है। या तो वो न्याय करके दंड हमें देता है या तो फिर वो दया उसका प्रेम उसको दिखाता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको हमारे ऊपर में दंड की आज्ञा आनी चाहिए थी, हमको मरना था, हमको नरक के अंदर में जाना था, परमेश्वर से दूर रहना था, लेकिन उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह जो दया का धनी है उसने हम पर प्रेम किया, उसने हम पर प्रेम किया। परमेश्वर की जो महानता अगम्य है वो यहां पर हमको दिखती है कि वो इतना महान है, इतना महान है कि उसने हमको जो हम मरे हुए थे, हम नरक में जा रहे थे, लेकिन दया किया, प्रभु ने दया की, हमको बचा लिया, प्रभु ने हमको बचा लिया। यानी कि जब हम परमेश्वर के विश्वास के बारे में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास की जब परीक्षा होती है और विश्वास को परखा जाता है, तो कौन से विश्वास को परखा जाता है? कि आपने जिस प्रभु के ऊपर में विश्वास किया, जो प्रभु आपको आगे ले जा रहा है, उस प्रभु को आप कितना जानते हैं। उसका वचन हमें विश्वास देता है। जब हम पढ़ते हैं प्रभु के ऊपर में विश्वास हम करते हैं, उस प्रभु को जानते हैं, यानी कि विश्वास वहाँ हमें उत्पन्न होता है प्रभु के वचन के जरिए, और प्रभु के ऊपर में हम विश्वास करते हैं और उस प्रभु को जानते हैं। माना कई बार हम उस प्रभु को बहुत हल्का से लेते हैं कि हाँ प्रभु महान है, हाँ प्रभु पवित्र है, हाँ प्रभु दयालु है, लेकिन फिर उसकी गहराई में, उसकी महानता की जो गहराई है, उस गहराई को हम नहीं जानते, हम उसका अध्ययन नहीं करते। और इसीलिए जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे विश्वास को परखा जाता है, का मतलब हम कहाँ पर है प्रभु में। उद्धार हमने पाया है, प्रभु यीशु मसीह का हमने स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को हमने जीवन दिया है और हमको मुक्ति मिली है, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर हम उसी जगह पर रहते हैं और उससे बढ़ते नहीं है, तो हमारा जो विश्वास है प्रभु के ऊपर में, वो विश्वास कहाँ जाता है? यानी कि उसकी परख होती है। और उसकी जब परख होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब कठिनाइयों से, संघर्षों से हम जब गुजरते हैं, तो हम प्रभु के करीब आते हैं। प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें मौका देता है इस समय के, इस कठिनाइयों के अंदर में, संघर्षों के अंदर में, कि हम उसकी महानता को जानें, संघर्षों में उसकी महानता को जाने, उसके चरित्र को जाने, उसको पहचाने, उसके नजदीकता में आए, उसका अनुभव करें। शद्रक, मेशाक और अबेदनगो के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा दानियल की किताब के अंदर में, और शद्रक, मेशाक, अबेदनगो को कहा गया था कि जब शंख बजते हैं, जब बाजा बजता है, उस समय में हर एक व्यक्ति को मूर्ति के सामने में झुकना जरूरी है। लेकिन शद्रक, मेशाक और अबेदनगो प्रभु के पीछे चलने वाले नौजवान थे और प्रभु जी को मानते थे, और उसके अलावा वो किसी के सामने में झुकते नहीं थे। और यहाँ पर जब देखा जाता है, उनकी परीक्षा होती है उनके जीवन में, और पता चलता है कि ये मूर्ति के सामने में जो राजा ने बनाई है, वो झुक नहीं रहे हैं, तो उनको अग्नि की भट्ठी में फेंका जाता है। और फेंकने से पहले उनको कहा जाता है कि क्योंकि तुमने ये नहीं किया, और इसीलिए तुम्हें इस आग की धधकती भट्टी के अंदर में फेंका जाएगा। और तब वो कहते हैं कि राजा, आपको जो सही लगे वो करिए, क्योंकि हम जानते हैं हम मूर्ति के सामने में नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बचाएगा, वो आपके हाथ से हमें बचाएगा, हमें विश्वास है। उनकी परीक्षा हो रही थी, वो कह रहे थे हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमें बचाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं भी बचाता तो वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। और जब उनको डाला जाता है, और हम देखते हैं कि वहां पर उनको कुछ नहीं होता है, और उनको बाहर ले आया जाता है। दानियल की किताब में, दानियल के बारे में हम जानते हैं, 6वें अध्याय के अंदर, उसको सिंहों की मांद में डाला जाता है, उसी के लिए जो वो अपनी हर रोज की बात वो करता था प्रभु परमेश्वर से, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और वहां पर जो षड्यंत्र रचा गया उसके लिए, क्योंकि उसको वो जो 12 अधिकारी थे उसके ऊपर में अधिकारी बनाया गया था, तो उन अधिकारियों ने उसके जीवन के लिए षड्यंत्र रचा था कि हम कुछ करें, और राजा दारा राजा के पास में जाकर उसका लेखित में लिखते हैं कि कुछ समय तक दारा राजा केवल तेरी उपासना हो जाए, ये करना चाहिए। और ये जो अधिकारी जब दानियल को देखते हैं कि दारा राजा की उपासना वो नहीं करता है, अपने परमेश्वर की उपासना करता है जैसे वो हर रोज करता है, तब वो जाके दारा राजा के पास में जाकर कहते हैं कि जो दानियल है वो तेरी उपासना नहीं करता है, लेकिन उसके परमेश्वर की उपासना करता है, और इसीलिए जो हमने तय किया है उसके अनुसार में उसको सिंहों की मांद में डाला जाए। और उसको सिंहों की मांद में डाला जाता है, वहां पर प्रभु जी उसको बचाता है, बाहर ले आता है। संघर्ष परीक्षा के अंदर में आपका मेरा जो विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर में है वो प्रभु कौन है, उसको हम कितना नजदीकता से जानते हैं, हम उसको कितना पहचानते हैं, उसका अनुभव हमने कितना किया है। शादरक मेशाक अबेदनगो ने किया, दानियल ने किया, बाइबल के अंदर में हर एक प्रभु के जो दास है उन्होंने वो अनुभव किया। पौलुस ने किया, नए नियम के अंदर में पतरस ने किया, यूहन्ना ने किया, प्रभु के दासों ने वो अनुभव किया, उसके साथ में रहे और जो विश्वास उनका था उस परमेश्वर के ऊपर में है ना, वो परमेश्वर कोई हल्का परमेश्वर नहीं। और आज सुबह में जिस परमेश्वर की आराधना आप और हम करते हैं वो परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि शायद मान जाए, शायद नहीं माने, उपासना कर ले, नहीं, वो परमेश्वर बहुत ही महान, उसकी महानता बहुत अगम्य है। जो हम पापों के कारण भी जब मर रहे थे तभी हमारे ऊपर में दया करने वाला ऐसा कौन है जो महान है, ऐसा परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, और उस परमेश्वर को हमें जानना है, उस परमेश्वर को हमें पहचानना है, दिन प्रतिदिन उसको हमें समझना है, उसके पीछे चलना है। और इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो रही है और तुम कहाँ हो। विश्वास, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब विश्वास उत्पन्न होता है। हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, और इसीलिए कलीसिया में आना बहुत आवश्यक है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, बाइबल अध्ययन में आना बहुत आवश्यक है प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, ताकि हम उस प्रभु को जाने जिसको, जिसके पीछे हम चलते हैं, उस प्रभु को हम पहचाने जिसके पीछे हम चलते हैं, उसके चरित्र को हम समझे, ताकि हम मजबूत बने, प्रभु के विश्वास में हम मजबूत बने। एक छोटे से बेटे को अपने पिता के साथ में बातचीत कर रहा था, तो वो छोटा लड़का अपने पिता को अपने घर के छत के ऊपर में बैठा था और ऊपर में हवाई जहाज जा रहा था, तो वो ये कह रहा था कि पापा कितना छोटा सा हवाई जहाज है, देखो कितना सा दिख रहा है। तो पापा कहते हैं, हाँ बेटा बहुत छोटा है, और बोले कि आप तो पायलट है, आप कैसे उसको उड़ाते, कहाँ बैठते हैं आप, आपके बैठने की जगह भी नहीं है उसके अंदर में। पापा ने केवल मुस्कुराते हुए उसको कहा कि हाँ बेटा बहुत छोटा सा है। फिर पापा उसको दूसरे दिन हवाई अड्डे पर ले गए, और हवाई अड्डे पर ले गए तो हवाई अड्डा के ऊपर में उसने देखा कि बहुत बड़ा हवाई जहाज है, और फिर पापा उसको अंदर ले गए, फिर पापा ने उसको दिखाया, वो अपनी केबिन दिखाई, 250 लोग बैठ सकते हैं, इतनी कुर्सियां उसके अंदर में है, खाना वहां पर पका हुआ रखा हुआ है, इसको रखने की जगह है, ढेर सारा सामान, 200 लोगों को ले जाने के लिए वहां पर सामान रखने की जगह है। और जब वो लड़के ने उसको देखा तो वो चकित हो गया कि पापा हवाई जहाज कितना बड़ा है। पापा कहता है कि बेटा जब हम दूर से हवाई जहाज को देखते हैं ना तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन जब हम नजदीक आ जाते हैं हवाई जहाज के तो उसकी भव्यता हमें पता चलती है। परमेश्वर के जितने दूर हम रहेंगे वो छोटा सा नजर आएगा, लेकिन जितना हम नजदीक उसके आएंगे उसकी भव्यता, उसकी महानता अगम्य है, उसको हम देखने पाएंगे, उसके अंदर हम जाने पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा हो, हमारे विश्वास की परीक्षा हो, ताकि संघर्ष जब आते हैं तो संघर्ष के अंदर में जो विश्वास प्रभु पर, प्रभु जी के ऊपर में हमने किया है, उसकी जब परीक्षा होती है, जब परीक्षा होती है तो हम उसमें से बाहर निकलते हैं। एक सोना जैसे भट्टी में जाता है, गर्म होता है और चमकते हुए बाहर आता है, वैसे संघर्षों में मसीही जीवन जब गुजरता है और जब बाहर आता है तो वो चमकता हुआ नजर आता है। प्रभु चाहता है कि हम संघर्षों को इसीलिए आनंद की बात समझें, संघर्षों को इसीलिए हम आनंद की बात समझें, क्योंकि वो प्रभु के नजदीक ले जाता है, हमें उसमें से बनाता है, हमारे अंदर से जो भी चीज सोने के अंदर से निकालनी पड़ती है वैसे निकाल कर हमें एक साफ और पाक और पवित्र बनाता है। और फिर उसमें लिखा है कि जब वो विश्वास के परखे जाने से धीरज को उत्पन्न करता है, इसमें लिखा है कि धीरज, धीरज एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा सामर्थ्य है जो कठिनाइयों के बीच में से जब हम गुजरते हैं, संघर्ष के बीच में से जब हम गुजरते हैं, उसमें वो हमें शांत रखता है, उसमें हमें वो शांत रखता है, और शांत रखते हुए हमें वो मदद करता है, धीरज हमें मदद करती है कि हम कि हमारे अंदर में जब धीरज उत्पन्न होती है तो हम उतावले नहीं बनते, हम उतावले नहीं हो जाते। उतावलापन धीरज का जो विरोध शब्द अगर हम कहें, तो हम जब संघर्ष आता है तो संघर्ष के अंदर में कई बार ऐसा निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और जब जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हम शायद सही जगह पर नहीं जाते। तो वो जब हम हमारा विश्वास बढ़ता है तो विश्वास के साथ में हमारे अंदर में धीरज उत्पन्न होता है, और वो धीरज जो सामर्थ्य जो शक्ति शांत रहने के लिए हमें मिलती है उस संघर्ष के बीच में, वो बहुत जरूरी है, जो हम नहीं उत्पन्न करते लेकिन प्रभु हमारे अंदर में उत्पन्न करता है, उसके वचन के जरिए, प्रभु को जानने के जरिए, उसके नजदीकता में जाने के जरिए वो धीरज हमारे अंदर में आती है और हमें सहायता करते, धीरज को अपना काम करने। कई बार हम अपना काम करते धीरज को काम नहीं करने देते हैं। याकूब कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो। जब हम धीरज को अपना काम करने देते हैं तो यहाँ पर लिखा है चौथी आयत में, धीरज को अपना काम पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। सिद्धता यहाँ पर यह नहीं कि हम पाप रहित हो जाएंगे, लेकिन सिद्धता का मतलब यहाँ पर हमको ये बताया कि हम परिपूर्ण बनेंगे, जो मैच्योर बनाएंगे, हमारे अंदर में जो आवश्यक है वो चीज प्रभु हमें देगा। और उसके बारे में लिखा है, क्या हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, या जब जब हमारे ऊपर कठिनाइयों से जब जाते हैं तो क्या हम उसको आनंद की बात समझते हैं, क्या हम उसको आनंद की बात समझते हैं, क्या हमारा विश्वास परखा जा रहा है, या फिर कोई मतलब नहीं, संघर्ष नहीं आ रहे जीवन में, हम बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर नहीं है कोई तकलीफ, कोई संघर्ष नहीं है, तो डरावना सा लगता है, क्योंकि हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं। ये मौका है धीरज संघर्ष कि हम प्रभु में बढ़ते जाए। तीसरी बात, आखिरी बात हम जल्द से देखना चाहेंगे, इसके अंदर में लिखा है पांचवी आयत से आठवीं आयत तक में ये लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचिता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। याकूब जब लिखता है तो कई विषयों को वो बार बार बदलता है। यहाँ पर उसने ये लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसको दी जाएगी। बुद्धि की जरूरत हमें जीवन के हर व्यवहार में, हर बात में, दिन प्रतिदिन बुद्धि की हमें आवश्यकता पड़ती है। हम सुबह में उठते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, घर में रहते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हर एक वक्त में हमें बुद्धि की आवश्यकता की जरूरत होती है। यहाँ पर खास तौर से जब हम परीक्षा की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, तो हम उसको रखते हुए देखेंगे कि जब संघर्ष आता है तो संघर्ष में हमें ज्ञान, हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। और इसीलिए यहाँ पर याकूब कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाए। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ठोको तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जो कुछ भी तुम विश्वास से मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि याकूब भी यहां पर कहता है कि बुद्धि को तुम मांगो और प्रभु वो देगा। और खास तौर से जब संघर्ष से गुजरते हो तो उस वक्त में कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि कैसे हमें मांगना है, प्रभु से मांगना है, यानी कि बुद्धि की जो आवश्यकता और प्रार्थना का महत्व यहाँ पर याकूब हमें कहता है। जब हम ऐसी बातों से, संघर्ष से जब हम जाते हैं, याकूब का तीसरा अध्याय अगर खोलेंगे तो तीसरे अध्याय के अंदर में 13 आयत से लेकर 18 आयत तक वो स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बताता है। अगर आप पढ़ेंगे, बुद्धि की जरूरत है, याकूब 3:13 से आखिरी तक। यहां पर दो किस्म के ज्ञान के बारे में अंकल ने कुछ समय पहले इसका जिक्र किया था जब उन्होंने बाइबल पढ़ा था, सांसारिक ज्ञान और स्वर्ग से आया हुआ ज्ञान। ये दो ज्ञान के बारे में यहां पर लिखा है। इसमें लिखा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कार्य को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न करना और न सत्य के विरोध में झूठ ही बोलना। यह तो वह ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, स्वाभाविक और शैतानी, क्योंकि यह डाह और स्वार्थी आकांक्षा होती है, वो बखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी होती है। 17वीं आयत में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है, मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धार्मिकता है मेल के साथ बोते हैं। यानी कि यहां पर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्ञान का धनी है और किसी के पास में ज्ञान की पूर्ति नहीं है, लेकिन जो ज्ञान का धनी है, प्रभु का वचन कहता है, ज्ञान के अंदर में जो संपूर्ण है, ज्ञान के अंदर में जो अपने आप में पूरा है, वो हमारा परमेश्वर है और उसके पास में ज्ञान रखा हुआ है, धन, ज्ञान का धन रखा हुआ है। और इसीलिए जब हमें उसकी आवश्यकता है, जब हम संघर्षों से जाते हैं, कठिनाइयों से जाते हैं, या हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम इस मसीह जीवन के अंदर में बढ़ते हैं, तो याकूब कहता है कि परमेश्वर से मांगा जाए, परमेश्वर से वो देगा। और यहां पर लिखा है जो हमने पढ़ा कि वो किस रीति से हमें देगा, क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। वो सबको उदारता से देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या आपको हमको बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है? क्या हम कोई ऐसे कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं? हो सकता है व्यक्तिगत तौर से हम बहुत बीमार हैं, या परिवार में कोई बड़ा हादसा हुआ है जिसमें से आप उस कठिनाइयों से गुजर रहे आज सुबह में, या तो फिर आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई संघर्ष आपके अंदर में है जो किसी को नहीं पता है, या परिवार के अंदर में कोई कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, जिसमें से आप जा रहे हैं आज सुबह के समय पर। आप यहां पर है, आपका शरीर यहां पर है, आपका मन कहीं और है आज सुबह। प्रभु ये कहता है कि जब तुम संघर्ष से जाते हो, तकलीफों से जा रहे हो, कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, तुम्हें मजबूत किया जा रहा है, तुमको बनाया जा रहा है, प्रभु जी को तुम नजदीकता से समझने जा रहे हो, और इसीलिए उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि वो परमेश्वर जिसको तुमने जीवन दिया है, जिसने उस जीवन को उसके हाथ में लिया है, वो परमेश्वर हमें बना रहा है, वो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, वो परमेश्वर हमें घड़ रहा है, वो परमेश्वर हमें बना रहा है, उसको आनंद की बात समझो। बढ़ते जाओ प्रभु में, याकूब यहां पर हमें समझाता है, मांगो, बिना संदेह के मांगो। अगर बुद्धि की कमी है, अगर हमें आवश्यकता है, प्रभु कहता है कि मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। संदेह, doubts limits the power of God, किसी ने कहा है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को शंका रोकती है। लेकिन doubts तब आएंगे जब हम प्रभु को जानते नहीं है, संदेह तब रहेगा जब हम प्रभु को सही रीति से पहचानते नहीं है। अगर हम दूर से देखते हैं तो छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब हम नजदीकता में जाएंगे तो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, प्रभु को हम जानने पाएंगे, प्रभु को हम जानेंगे, वो संदेह नहीं रहेगा। मेरा प्रभु, दानियल का प्रभु, शाद्राख, मेशाख, अबेदनगो का प्रभु, मेरा प्रभु है जिस पर मेरा विश्वास है, वो पवित्र है, वो महान है, वो अति महान है, वो सब कुछ कर सकता है, ये भरोसा मेरा प्रभु चाहता है। और इसीलिए आज आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें मदद करे। कठिनाइयां हमारे लिए अच्छी बात है, संघर्ष हमारे लिए दुख की बात नहीं है, निराशा की बात नहीं है, बल्कि दुख और कठिनाइयां हमारे अंदर में आनंद लाए, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जा रहा है, हमको मजबूत बनाया जा रहा है। और वो प्रभु जो दया का धनी है, वो हमें धन, ज्ञान का धन, बुद्धि का धन देने के लिए अभी भी तैयार है। प्रभु सहायता करे आज कलीसिया को, हम सबको, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन को, कि उस प्रभु की नजदीकता में हम जाएं, प्रभु को और पहचानें और उसको हम प्रेम करें।